ओम शांति। फ्रेश हैं सारे, बिल्कुल सजग। यस, तो मुस्कुरा के कहें ओम शांति एंड महसूस करके कहें ओम शांति। धन्यवाद। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच गिरीश भाई साहब हैं। गिरीश भाई साहब एक बहुत ही बहुचर्चित ट्रेनर हैं, जिन्होंने अपनी पिछले 24-25 वर्षों से अधिक समय से ज्यादा इन्होंने ये प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इससे अब जुड़े हुए हैं। आपने कई एक संस्था जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, इसरो, आईआईटी मद्रास, रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स इत्यादि इत्यादि, इन सभी कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर आपने अनेकों सेमिनार्स कराए हैं, अनेकों वर्कशॉप्स कराई हैं। आपका एक अपना एक यूनिक स्टाइल है, एक बहुत ही उनका अपना एक नायाब सा तरीका है अपने चीजों को एक्सप्रेस करने का, चीजें समझाने का, उन चीजों को समझाने के बाद उन चीजों से आपका रिजल्ट निकलवाने का। आपने भारत की तकरीबन जितनी भी जो हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, आप नाम लीजिए, हरेक तकरीबन हरेक एजेंसी के अंदर, हरेक संस्थान के अंदर भाई साहब ने जाके कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेशन, कोई वर्कशॉप लिया है, जिससे कि अनेकों का इसमें उनका उद्धार हुआ है। आप पर्सनल प्रोफाइल एनालिसिस, जो कि एक व्यक्ति के बिहेवियर असेसमेंट, जो आपका चरित्र, आपका जो कार्य करने का तरीका, उसके असेसमेंट का, और ह्यूमन जॉब एनालिसिस, जो कि एक बिहेवियरल बेंचमार्क है, ये बेहतर भाई साहब भी बेहतर समझाएंगे इसको, उसके लिए आप एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड यूजर हैं। हाल ही में 24वीं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी श्रीलंका कोलंबो के अंदर, जहां पे भाई साहब को आमंत्रित किया गया था कि जितने भी इंटरनेशनल स्पीकर्स वहां आए थे उनके साथ आप स्टेज को साझा किया था और उन्होंने अपने विचार वहां व्यक्त किए थे। इन सारी चीजों के अलावा भाई साहब का जो बहुत अहम हिस्सा रहा है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, रोटरी एजेंसीज के अंदर, आपने जो यूथ विंग है, आपने जो बाकी जितने जो नौजवान हैं उनके साथ आपने करियर काउंसलिंग, उनके लिए आप बहुत उनको जिंदगी को सहज जीने का तरीका उनको सिखाते हैं। आज का जो भाई साहब को टॉपिक दिया गया है हार्मनी इन रिलेशनशिप, इस पे मैं भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि हार्मनी इन रिलेशनशिप के ऊपर कैसे हमारी रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी रहे, उनके तरीके भाई साहब हमें सिखाएं। ओवर टू यू भाई साहब। ओम शांति।
ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। एक दूसरे को देख करके मुस्कुराकर प्यार और सम्मान की भावना से कहें ओम शांति। एक चीज का मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि पति पत्नी साथ नहीं बैठे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि तब बैठे होते तब तो ओम शांति होता था। ठीक है, आप लोगों की मुस्कुराहट में कुछ कुछ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है ना, कि भाई घर में तो हाल ऐसा ही होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। वेरी गुड। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा, घर वाले? हाथ छोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग, मतलब बस रिपीट ही करो जी। मॉर्निंग चल रहा है क्या? तो फिर मॉर्निंग क्यों कहा? हाँ जी, मतलब सुबह से भाई साहब सो ही रहे थे, अभी अभी जगे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग। एक हम दो मिनट ये गीत सुनते हैं। ठीक है, सीधे बैठें, कोशिश करें अगर हो सके तो जागृत अवस्था में रहें, आंखें बंद ना करें। मनुष्य जब आंखें बंद करता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव नेचर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक नेचर होता है, जिस चीज को वो बार बार करता है अगर वही चीज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कर्म में आ जाएगा। प्रश्न, मनुष्य आंखें बंद कब करता है? सोने के लिए। और यहां बैठकर भी अगर आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो ब्रेन को एक मैसेज जाएगा, स्लीपिंग टाइम, सो जाओ जी। और इतनी गहन शांति की अनुभूति होती कुछ लोगों को। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छी तरह एकाग्रता से मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन में नींद नहीं करनी है, मेडिटेशन बहुत जागरूक होकर के करना है, बहुत अवेयरनेस का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे नहीं, ठीक है, आंखें खोल करके ये गीत को सुनना, उसके मधुर संगीत को सुनना, उसके शब्दों को सुनना और महसूस करना, जो जो उसमें बोला जा रहा है वैसे वैसे मैं हूं, थोड़ा अच्छा खुश महसूस करें। प्रश्न, जब मनुष्य बहुत खुशी को अनुभव करता है तो नींद आएगा? जोर से बोलिए। जब बहुत डर को अनुभव करेगा तो नींद आएगा? हाँ, तो जब कोई भावना ही नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, मेडिटेशन चार्जिंग करना है, इन भावनाओं के अनुभव करना है। आपने सुबह से कितने अच्छे अच्छे सेशन सुना, मैं प्रोग्राम शेड्यूल देख रहा था, खुशी, हैप्पी लिविंग, हमारे संजीव भाई ने आपको खूब हंसाया होगा और बहुत सारी बातें सुनाई होगी, अच्छी अच्छी बातें, और ये भी समझाया होगा कि खुशी के लिए कुछ करना नहीं है, आत्मा का ओरिजिनल नेचर खुशी है, ऐसे ही बैठ करके खुशी को अनुभव करना। फिर देखिए आपकी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, खा करके खुश, पहन करके खुश, देख करके खुश, आज लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं जी, सब एक्सटर्नल है, इंटरनल हैप्पीनेस तो है ही नहीं। ठीक है, तो अपने आप को अभी कहें, अभी मुझे सोना नहीं है, मन को शांत करना है और इन अनुभव जो मैं हूं उसको मुझे एक्सपीरियंस करना। ठीक है, दो मिनट करें, चलिए सीधे बैठें, मैं कमेंट्री नहीं कराऊंगा, बस ये हम गीत सुने और देखना कि मन कहीं इधर उधर जा रहा हो तो उसको बड़े प्यार से लेकर के आए, पूरा एफर्ट। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कहीं भी चले जाएगा, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा जी, ऐसे ही मन को भी कहीं नहीं जाने दे, उसके भी कंट्रोल में रहे, और अगर इधर उधर जा रहा तो ब्रेक लगा दे, स्टीयरिंग को घुमा दे। तो कई बार किसी ने पूछा, भैया स्टीयरिंग है कहां, वहां की तो स्टीयरिंग नजर आ रही है। मैं आत्मा अपने मन को आदेश दो, निर्देश दो, अगले एक मिनट ये जो गीत चल रहा है इस पर पूरा ध्यान, थोड़ा भी मन इधर जाए नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध होगा कि सेशन में आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। मुझे सही उत्तर नहीं चाहिए, एक उत्तर चाहिए। कभी कभी सही के चक्कर में हम उत्तर ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उसका आपको उत्तर दूं। आज का जो विषय है वो है संबंधों में मधुरता। क्या ऐसा आपको महसूस होता है कि आज के वर्तमान समाज को आप देखें तो संबंधों के कारण, विशेष परिवार में रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन और तनाव है? हाँ या ना, ऐसा है जी? अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य संबंध की रचना या परिवार की रचना क्यों करता है, और उसकी भी अगर शुरुआत अगर मैं कहूं शादी से होती है, मान लीजिए मैं अकेला कितना जीऊं जी, कोई तो एक जीवन साथी चाहिए, और फिर मैंने शादी की। और शादी दो लोगों के बीच नहीं होती है, दो परिवारों के बीच होती है। तो मान लीजिए इनके परिवार का, मान लीजिए इनके माता पिता वो मेरे माता पिता भी हो गए, ऐसे ही है ना। तो मनुष्य शादी या फिर परिवार की संघटना, उसकी रचना क्यों करता है? लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे घूर के ना देखें। एक बार मैं ऐसे ही भारतीय सेना का कार्यक्रम कर रहा था, थोड़ा सा मैं हंसाया था उनको, तो मैंने कहा शादी क्यों करता है मनुष्य? तो सामने जो बैठे थे जवान, शायद वो भी मेरी फ्रीक्वेंसी के थे, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया। मैंने कहा बहुत अच्छी भाई साहब, बताइए मनुष्य शादी क्यों करता है? तो उन्होंने कहा गलती हो गई साहब। तो हाइट है जी। मतलब भोग रहे। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा सब महसूस ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछता हूं ना, सीरियस नोट, मनुष्य शादी क्यों करता है? अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ किसने कहा, कोई बहन ने कहा? हाँ बोलिए बेटा। फैंटास्टिक। कोई एक जीवन साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, ठीक है ना। ओके और सर टू, फैंटास्टिक टू, क्या बात है। ये अपने दो दो अंश से परेशान है अभी वर्तमान में। वंश को बना, मजाक कर रहा हूं सर, वंश को बनाए रखने के चक्कर में हमारा टॉप फ्लोर खाली हो गया है, क्योंकि दो सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है। काहे को इतना जरूरी है जी अंश? अच्छा अंश, अच्छा वंश होना चाहिए ना। अब आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, गलत नहीं है, प्रोसेस में फिर कहीं प्रॉब्लम है। अच्छा अंश है, कंपेनियनशिप है, टू गेट हैप्पीनेस है, और एक दो और उत्तर दे दीजिए, थोड़ा जोर से बोलें, हाथ ऊपर उठाएं, मैं आपको देखना चाहता हूं। हाँ सर सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ नेचर। आप इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं शादी करके, नेचर इन पर निर्भर है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ नेचर। व्हाट ही मीन्स इज मे बी that if we don't get married then the nature would become unstable. No, ठीक है, that's okay. What else? Debatable है, but ठीक है, कभी और चर्चा करेंगे। Last एक और उत्तर, सामाजिक सुरक्षा। आप देते हैं या लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं, ये ठीक है, वो खुशी लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा देते हैं। आपको एक मजाक की बात बताता हूं, अब वही प्रॉब्लम है। विश्व भर में ऐसा एक संशोधन किया गया, एक रिसर्च किया गया, पता लगाने के लिए मनुष्य को तनाव क्यों होता है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दूसरा नंबर का प्रमुख कारण वो है संबंध। लक्ष्य तो आपका बहुत अच्छा है जी, खुशी, शांति, साथी, प्यार, आनंद, सुरक्षा। एक तो कोई व्यक्ति हो जो मुझे समझे, सारी दुनिया ना समझे, कम से कम तुम तो समझ रही हो ना कितना मेरा जीवन धन्य है। एक तो कोई व्यक्ति हो जो मुझे स्वीकार कर ले, सारी दुनिया मुझे बोले आपने महापाप किया, आप गलत हो, लेकिन एक तो व्यक्ति मुझे अनकंडीशनली स्वीकार, ठीक है गलती हो गई कोई बात नहीं मैं हूं तुम्हारे साथ। एक तो कोई व्यक्ति हो जो मुझे माफ कर दे बिना कंडीशन के, चलो गलती हो गई माफ किया, भले दुनिया ना भी माफ करे, घर वाले दूसरे माफ ना करे, एक तो व्यक्ति हो ऐसे घूर के ना देखें। कुछ लोग सोच रहे हैं टकलू ये सब फिल्मों में होता है, रियल में नहीं होता है, काय को एक तो कोई समझे, एक तो कोई ये करे, एक तो वो करे, ये सब हमको सिनेमा में और मूवीज में ही नजर आता है, प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होता है। आप लोगों के ना भाव से भी मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। एक तो कोई हो, ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा है, प्यार शांति सुरक्षा स्टेबिलिटी नेचर वंश, आई मीन सच गुड थिंग, बट वस्तु स्थिति तो कुछ और ही हो रहा है यहां पर, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है बट हो कुछ और रहा है। तो प्रश्न ये है कि संबंधों का अगर आधार या लक्ष्य इतना स्वीट है, इतना लवली है, इतना ब्यूटीफुल है, बट गड़बड़ कहां हो रहा है फिर, वो लक्ष्य हम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे। और उसका एक मुख्य कारण है और वो है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। और अगर जितने भी यहां बहने बैठी हैं उनकी भाषा में अगर कहूं, एक्सपेक्टेशन सुनने में तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन बहनों के पत्नियों के हाउसवाइफ के लैंग्वेज में कहूं, जैसा मैं चाहती हूं वैसे तो तुम करते नहीं, और जितने यहां पति मुस्कुरा रहे हैं सब पीड़ित नजर आ रहे हैं, ठीक है करेक्ट है सर, ऐसा ही होता है, ठीक है वो तो ताली कौन बजा रहा है, ठीक है बजाइए जोर से ताली एक बार, ठीक है सर आपसे मुझे सीखना है, इतने पीड़ा में भी ताली बजा सकता है कोई, ठीक है अपने दर्द का इजहार में भी कोई ताली बजा सकता है, भारत सुरक्षित है आपके हाथों में, ठीक है ना, हमारे सीमा सुरक्षित है आपके हाथों में, कोई भी चैलेंज में आप हिल नहीं सकते, अगर इतने बड़े चैलेंज को सुन के अगर ताली बजा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो चाहे कोई भी दो लोग हो, कोई भी प्रकार का संबंध हो, चाहे माता पिता और बच्चे हो, चाहे बॉस और सबॉर्डिनेट हो, या दोस्त मित्र ही क्यों ना हो फॉर दैट मैटर। प्रश्न, जैसे दूसरे, दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो, क्या कॉन्फिडेंस है जी, प्रश्न पूछा नहीं उसके पहले उनके पेट से आवाज आए नहीं ठीक लेकिन जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं, आपको नहीं लगता है कि हम सब हिटलर के खानदान के, बराबर ही नहीं है, सामने वाला जैसा चाहेगा वो मैं करूं ना करूं वो मेरी मर्जी है, वो मेरा चॉइस है, वो मैं डिसाइड करूंगा, वो मैं सोचूंगा, वो मैं बताऊंगा, करूंगा नहीं, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मैं पति हूं, क्योंकि मैं पत्नी हूं, क्योंकि मैं इस फलाना हूं, क्योंकि मैं दिमाका हूं, क्योंकि मैं पिता हूं, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो, ये इक्वेशन ही ठीक नहीं है। आध्यात्मिकता, समझदारी, और फिर जैसे कमल भाई ने आपको इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए होंगे, फिर तो क्रोध आ जाता है ना, तो क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हो मेरी बात, या तो माई वे या फिर हाईवे, और आजकल हाईवे ज्यादा अच्छा है, गडकरी जी ने इतना अच्छा रोड बना दिया, बोला बच आप जाओ मैं जा रहा हूं। प्रश्न पूछूं, बुरा मत मानिएगा, एक्सपेक्टेशन, इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है, कोई जबरदस्ती है, मजाक करता हूं, मेरी जब शादी हो रही थी ना तो शादी के मंडप में 7 फेरे लिए और फिर मंगलसूत्र बांधने की जब बात आ रही थी, तो जब मैं होने वाली पत्नी को मंगलसूत्र बांध रहा था तो पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, मंत्र उच्चारण के दौरान उन्होंने अपनी जेब से बंदूक निकाला, होने वाले पति टकलू गिरीश के कनपट्टी पे रखा, और मैं तो घबरा गया, मैं कहा ये क्या कर रहा हूं, उन्होंने कहा अभी इसी क्षण से होने वाली पत्नी से जीवन पर्यंत जीवन भर अगर तूने अपेक्षा नहीं की तो गोली से उड़ा दूंगा। मैंने कहा महाराज हर पल पल एक्सपेक्ट करूंगा। प्रश्न पूछूं, कोई जबरदस्ती है क्या एक्सपेक्ट करना, जबरदस्ती है क्या, नहीं तो मर जाओगे क्या, घुटन हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन फेड हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। बोलिए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये एक्सपेक्टेशन की शुरुआत कहां से हुई? बिना अपेक्षा किए जीवन, और कोई भी किताब पढ़ लीजिए आप या कोई भी समझदार व्यक्ति से पूछ लीजिए, अपेक्षा अर्थात दुख, हाँ या ना? सो व्हाई इज इट सो नेचुरल, क्यों इतना स्वाभाविक हो गया है? और बुरा मत मानिए, किसी ने कहा शादी क्योंकि, क्योंकि वो खुशी देगी। उदाहरण, 35 वर्ष तक मैंने शादी नहीं की थी, माता पिता थोड़े परेशान हो रहे थे, बोला बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, और मैं टाल रहा था। मैंने कहा देखता हूं, करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं, मम्मी को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। एक दिन मम्मी बड़े परेशान होकर मुझसे कहा, बेटा तू शादी क्यों नहीं कर रहा? मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि माँ को दुख हो रहा है, और मेरे मुख से गलती से निकल गया, थोड़ा जी लूं। आप अपने दर्द में भी इतना मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है? तो मम्मी ने कहा व्हाट डू यू मीन, हम लोग जीने रहे। मैंने कहा सॉरी, जीने का मतलब ये है थोड़ा इंडिपेंडेंटली जी लूं, फिर तो जिम्मेवारी है शादी संबंध में। तो मम्मी को भी परेशान देखकर मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बातें तो करनी चाहिए। तो मैंने मम्मी से पूछा हल्के में, मम्मी शादी क्यों करूं? अरे उनकी आंखें खिल गई, बच्चा रेडी है पूछ रहा, मैं उनको कन्विंस कर दूंगी। मम्मी बड़ी प्रसन्न होकर, मम्मी ने कहा शादी कर। मैंने कहा क्यों करूं? तो मम्मी ने मुझे जो सुनाया वो मेरे कानों पे गई, कानों से बुद्धि को टच किया और बात दिल पर आ गई। मतलब लॉजिकली भी इमोशनली भी मैं एग्री कर गया, और मैंने माताजी को कहा कल सुबह उठते साथ पहला चीज शादी कर लूंगा। आप लोग जानना चाहते हैं मेरी माताजी ने ऐसा कौन सा महामंत्र सुनाया जो बच्चा आज तक इतना डिले कर रहा था तुरंत हां कर दिया? जानना चाहते हैं? ऐसे नहीं, यस सर, थोड़ा उमंग उत्साह से बोलिए। जानना चाहते? दूसरों के मामले की जानकारी प्राप्त करने का उमंग कितना है आपको? दूसरों के घर का क्या हाल चल रहा है उसमें बड़ा मसाला लगता है। आपका यस सर में तो बड़ा उमंग उत्साह था, आप इतने अच्छे हमारे सुरक्षा बल हैं, और गिरीश भाई तो मस्त जीता है, पता है उसका संपूर्ण श्रेय आपको जाता है। आप अपनी जान की भी बाजी लगाकर भारत माँ की रक्षा में पीछे नहीं हटते। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। वंडरफुल। क्या क्या भाई साहब कह रहे थे ना, हम तो काफी जगह गए, हम तुरा बॉर्डर में गए हैं बीएसएफ के लिए, ऊपर कश्मीर में गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में गए, बहुत जगह, और हम जानते हैं आपकी कुर्बानी, आपका डेडिकेशन, सिर्फ आपका नहीं आपका परिवार जो उन चीजों को हैंडल करता है। सचमुच में आप बहुत बहुत विशेष हैं, बहुत महान हैं। ब्रह्मा कुमारीज आपको उस दृष्टिकोण से देखता है, परमात्मा भी आपको उसी दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है? तो जानना चाहते हैं? हाँ, तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा शादी कर। मैंने कहा क्यों करूं? माताजी ने कहा बेटा, मंत्र बता रहा हूं, उन्होंने कहा शादी कर। क्यों? क्योंकि शादी के बाद तेरी पत्नी तुझे प्यार करेगी, वो तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी, वो तेरे घर को संवारेगी, वो तेरे जीवन को श्रृंगारित करेगी, सुंदर करेगी। मैंने कहा यार डील बहुत अच्छा है, सब वो ही करने वाली है। मैंने कहा ऑफर इतना अच्छा है तो दो तीन कर लेता हूं, एक को क्यों? अरे ऑफर, अगर डिस्काउंट में ये ग्लास पे एक ग्लास फ्री मिल रहा है तो काय को नहीं छोड़े यार, इतना अच्छा ग्लास है। तो मैंने कहा मम्मी दो तीन कर लेता हूं, मम्मी ने कहा नहीं ओनली वन। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, 15 साल वेस्ट हो गए। और मैंने शादी कर ली। दुख की बात, विडंबना की बात बताता हूं, जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना उसकी मां ने भी उसको वो ही बताया। लड़की भी शादी नहीं कर रही थी, लड़की ने कहा क्यों करूं क्यों करूं, लड़की की मां ने कहा तेरा होने वाला पति तुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन कह रहा था सुरक्षा? वो तुझे कमा के खिलाएगा, वो ही विल बेयर योर चिल्ड्रन, वो तुम्हें नाम देगा,
लड़की ने कहा सब वही करने वाला है, तुरंत हाँ कर दी। और आज 15 साल हो गए मेरी शादी को, इंतजार कर रहा हूं कुछ करे। आप लोग खुद पर भी इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ वस्तु स्थिति बता रहा हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। किसी ने पूछा क्लास के बाद एक बार, सचमुच में आप शादीशुदा हैं क्या? मैंने कहा डाउट लग रहा है क्या? बोला हाँ, ऐसा तो कोई नहीं मुस्कुरा सकता है। मैंने कहा ये भी अच्छा है जी। भाइयों और बहनों, शादी या ना शादी आधार नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं वहां, प्रॉब्लम इधर है। हमारे अंदर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, और इसीलिए, और मैं चाहता हूं कि प्लीज नम्र निवेदन, आप अपने घरों में जाकर अपने बच्चों को ये सब सिखाएं। शायद हमारे माता पिता ने हमको नहीं सिखाया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी धंधा बिजनेस ये सब के लिए हमको इक्विप किया, बट जब इमोशंस की बात आती है, जीवन की बात आती है, जीवन के लिए कोई विद्यालय नहीं। क्या कोई स्कूल में हैप्पीनेस का क्लास होता है? और हमने क्या समझ लिया, अच्छे मार्क्स मिलेंगे तब खुश, दिवाली तो खुश, कोई इवेंट होगा तो खुश, और इसके कारण हमको बहुत प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि हम फिर इवेंट ही ढूंढ रहे हैं, अच्छे संदर्भ ही ढूंढ रहे हैं। खुशी का आधार मैं स्वयं हूं, मेरा ओरिजिनल नहीं। गन्ना मीठा होता है, हाँ या ना? किसने बनाया गन्ने को मीठा? साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल फोन ने, पत्नी ने, पति ने, पुरुष ने, महिला ने, ब्रह्मा कुमारी ने, हिंदू धर्म ने, राजनेताओं ने? वो उसका ओरिजिनल नेचर है, वो प्राकृतिक है। ऐसे ही मेरे अंदर भी एक गन्ना है, मेरा ओरिजिनल नेचर, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी ने ऐसा बनाया नहीं है, हूं ही मैं वैसा। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं जी इन सब चीजों को। तो संबंधों में मधुरता के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। विद द प्रमाइस, प्रमाइस क्या है? एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, वो अनहेल्दी है। शरीर के लिए भी अनहेल्दी है, संबंध के लिए भी अनहेल्दी है। आपको एक उदाहरण दूं, आज बच्चा होमवर्क कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, शायद वो इसीलिए कर रहा है, नहीं तो मम्मी डांटेगी। अब बच्चे और मां के बीच के संबंध में वो जो कर्म कर रहा है पढ़ने का, उसके पीछे का आधार डर है। डर आधारित जीवन, आज तो वो पढ़ लेगा आपके डर से, होमवर्क भी कर लेगा, एग्जाम भी पास होगा, लेकिन एक चीज जो आप और हम नहीं समझ रहे हैं, उसके अंदर डर भर रहे। मैं डर वाला नहीं हूं, मैं तो शांत हूं, शक्तिशाली हूं, स्टेबल हूं। ये कहां से आ रहा है? ये समाज से, परिवार से, संगठन से, स्कूल से, टीचर से, बच्चों, दोस्तों से। प्लीज आपसे निवेदन है, आपका संबंध घर में, परिवार में, बच्चों के साथ सुमधुर होना चाहिए। क्या बच्चा इसीलिए होमवर्क कर सकता है? क्योंकि मुझे मम्मी से प्यार है। इस संसार में जितने लोग सफल हुए हैं ना, किसी भी क्षेत्र में, उनका आधार स्नेह था। सचिन रमेश तेंदुलकर को पूछा गया, आप इतने सफल बल्लेबाज कैसे हुए? उन्होंने 3 शब्द कहा, आई लव क्रिकेट। लता मंगेशकर को पूछा गया, आप इतने प्रसिद्ध गायिका कैसे बने? लता मंगेशकर कहती थी, जीती हूं जब गाती हूं, हम और आप मरते हैं जब काम करते। ताली ना बजाएं, हर गलत चीज पे ही ताली बजा रहे हैं आप लोग, जब मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी। क्यों? क्योंकि मम्मी भी मर रही है जब बर्तन धो रही है। जिस दिन ज्यादा बर्तन होते उसी दिन वो काम वाली बाई को पता नहीं कौन सा GPS लगा हुआ है, ब्लूटूथ है, वो मैसेज भेज देती, भाभी जी तबीयत खराब है। अब बच्चा देख रहा है मम्मी फ्रस्ट्रेटेड होकर बर्तन धो रही है, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर पढ़ रहा है, क्योंकि नोबडी इज एंजॉइंग एनीथिंग। हम तो खुशी ढूंढ रहे हैं जी बर्तन धोने में, खुशी और प्यार और शांति, नो फ्रस्ट्रेशन नो एंगर। जब हम ये करेंगे तो वो बच्चा देख रहा है ना कि मम्मी 24 घंटे मस्त आनंदित रहती है, मुझे भी मम्मी जैसे ही बनना है। वो भी आनंद से पढ़े, खुशी से पढ़े, खुशी के लिए ना पढ़े, कि पढ़ूं परेशान होकर दुखी होकर फिर एग्जाम लिखूं डर कर फिर रिजल्ट अच्छा मिले, एक दिन की खुशी 364 दिन की परेशानी। हमारा तो खुशी इज द एंड टारगेट बट इट इज नॉट अ प्रोसेस। तो प्लीज यहां क्लास अटेंड करिए खुशी से, खाना खाइए खुशी से। आप यहां पे जितने भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को देखिए जिसने बैज लगाया उनके चेहरे पे देखिए, और यहां पे किसी को पेमेंट नहीं मिलता है। एक भी व्यक्ति को आप ढूंढ के बता दीजिए आपको यहां पेमेंट मिल रहा हो, सुधांशु भाई से लेकर सच्चान भाई से, तो ऑफिसर्स हैं, बाकी भी आप देख लीजिए किसी को भी, बिना पैसे के इतने आनंद पूर्वक कैसे काम कर रहे हैं जी। वैसे ही तो सचिन तेंदुलकर भी करता था, उसका रिजल्ट है जितना खुशी और आनंद से करेंगे ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या हम बच्चों के अंदर वो गुणों को, यही तो संबंध है ना, करके दिखाएं, बोले एडवाइस करे आजकल कोई नहीं सुनता है, मैं वैसा बनूं। तो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है संबंधों में मधुरता, और जब हम संबंधों में मधुरता की बात कर रहे हैं इसका सिंपल अंडरस्टैंडिंग है मेरा दूसरों के साथ संबंध अच्छा हो, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, समान स्तर के लोगों के साथ, अपनों के साथ, अनजानों के साथ, सबके साथ अच्छा हो, हार्मोनियस हो, स्वीट हो, लवली हो, यही है लक्ष्य। ये जो तीसरा संबंध है मेरा दूसरों के साथ, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जो भी है, ऑफिस, परिवार, इसके पहले दो संबंध को ठीक करिए, ये तीसरा संबंध ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है ये दो संबंधों की अज्ञानता है हमको, हमको पता ही नहीं है, हम पूरा इन्वेस्टमेंट ये तीसरे के साथ कर रहे हैं, सामने वाले को खुश करे, सामने वाले को प्लीज करे, सामने वाले को सेटिस्फाई करे, सामने वाले को कन्विंस करे, सामने वाले को मोटिवेट करे, हम इस लेवल पर काम कर रहे हैं, टर्शरी लेवल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये दोनों का पता ही नहीं है। और कल से या आज सुबह से जो आप सुन रहे हैं वो ये दो संबंध को ठीक करना, इसको ठीक करिए ऑटोमेटिकली, योर थर्ड रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली, आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है दूसरों के साथ संबंध अच्छा करने के लिए, वो स्वाभाविक, ये रिजल्ट है, यहां मेहनत है। पहला, मेरा मेरे साथ क्या संबंध है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। तो स्वयं का साथ, फिर तो दो लोग हो गए, जो शायद आज सुबह के क्लास में या फिर सेल्फ एम्पावरमेंट के क्लास में या सुबह का मॉर्निंग राजयोगा मेडिटेशन के क्लास, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं जिसको हमने आत्मा कहा, सोल कहा, एनर्जी कहा, पावर कहा, कुछ भी कह लीजिए, और उसमें हमारा फिर मन, बुद्धि, संस्कार, आपको कमला दीदी ने कितना स्पष्ट बताया। आपको एक उदाहरण देता हूं स्वयं के साथ संबंध का, इजी करके। मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा है, वो स्कूल से आया, रिजल्ट देखकर आया, शायद मान लीजिए उसको कम मार्क्स मिले या थोड़ा फेल हो गया एक दो सब्जेक्ट पे, और वो परेशान है, थोड़ा दुखी है, चिंतित है, और वो रो रो के घर में आया। तो मम्मी ने कहा, मां ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? बोला मैं फेल हो गया। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अब जब सामने वाला इतना दुखी हो रहा है तो उस वक्त तो हम डांटेंगे नहीं, एटलीस्ट हमने कहा कोई बात नहीं, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो बंद ही नहीं हो रहा, तो मम्मी ने पापा को फोन कर दिया, पापा भाग करके आए। और ये शायद हम सब ने किया है जीवन में, कोई बहुत नई बात नहीं है, आध्यात्मिकता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। और हमने और आपने क्या किया, तुरंत घर में आए, बच्चे को गोदी में उठा लिया, बोला चल बाहर घूम कर आते, आइसक्रीम खा के आते, उसको थोड़ा घुमाया, उसके साथ थोड़ा खेला। क्या करना है, क्या प्रयास कर रहे हैं, बच्चे की वर्तमान जो वो अवस्था है, वो रो रहा है, परेशान हो रहा है क्योंकि वो मार्क्स कम हो गया, उससे हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने ऐसे कई दोस्तों के साथ किया होगा, घर वालों के साथ किया होगा, कुछ परेशानी में कोई होंगे तो उन्होंने कहा चलो चलो छोड़ दो, ये बातों को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चलो खाना खाते हैं, अभी चलो थोड़ा वॉक करके आते, अभी थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते। ऐसा आप लोगों ने किया है, हाँ या ना? और शायद आपके वो जो व्यक्ति होंगे वो दो तीन घंटे के बाद उन्होंने आपसे कहा होगा, अब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन थोड़ा शांत हो गया। समस्या वही है, लेकिन मन की अवस्था जो चिंता में थी, रो रहे थे, परेशान थे, उससे थोड़ा हट गया, क्योंकि हमने उसके मन को बार बार वो ही सोच रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उससे हमने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यस और नो? और वो शायद ये भी कहेंगे आपका बहुत दिल से धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है, शायद मैं ये अब समस्या को कैसे हैंडल करना है उसको देखेंगे। या बच्चा भी शांत हो गया तो फिर मम्मी पापा पूछ सकते हैं, बेटा क्या हुआ, कोई बात नहीं, और अच्छी तरह पढ़ाएंगे हम आपको, पढ़ाएंगे हम ट्यूशन क्लास, जो भी है समाधान। करेक्ट? आपको समझ में आ रहा बातें? प्रश्न पूछो। पप्पा गिरीश ने बच्चे को उसकी समस्या, रोना, परेशान होना, दुखी होना, उससे तो मैंने उसको हटा दिया। प्रश्न, गिरीश पप्पा के लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, मेरे से ही गलती हो गई, मेरा ही नुकसान हो गया, मैं ही फेल हो गया जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और बहुत बड़ा नुकसान हो गया और मैं ही रो रहा हूं। प्रश्न, क्या मैं अपने आप को बोल सकता हूं टकलू चल आइसक्रीम खा के आते? मेरा मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कैसा? आप बच्चे के साथ तो इतने अच्छे पप्पा बन रहे हो, दोस्तों के साथ तो इतने अच्छे परम मित्र बन रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसको इंस्पायर कर रहे हो, उसको पेप अप टॉक कर रहे हो, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको एनर्जी भर रहे हो, तो खुद के से ही भी तो कर लीजिए। पता है हम खुद के लिए क्या करते हैं? मेरा तो जीवन ही नर्क हो गया है, इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर ली, अब क्या होगा मेरा। आप बच्चे को कहना नालायक तूने बहुत बड़ी गलती की है, तेरा जीवन बर्बाद होने वाला है, कहोगे कभी ऐसे? दोस्त को कहोगे अगर उससे गलती हो गई थी? अरे कभी नहीं, उसको हो गया गलती, गलती की है उसने, फिर भी आप उसको उसकी गलतियां नहीं याद दिलाते हो। लेकिन खुद के साथ हमेशा नेगेटिव क्रिटिसिज्म वाला, माफी चाहता हूं, ऐसा ही है आध्यात्मिकता। आपको पहला स्टेप, आप अपने आप से तो थोड़ा प्यार से बात करो, हो गया गलती, आपने प्यार किया ना बच्चे को, सांत्वना दिया ना, होपफुल टॉक दिया ना, पॉजिटिव टॉक दिया ना, वो खुद के साथ कर लो। इसी को पता है क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, हमने हजार बार यूज किया अपने जीवन, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने उसको कॉन्फिडेंस दिलाया ना, इसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको दिलाया ना, चिंता नहीं कर तू आगे बहुत अच्छा करेगा। खुद को भी बोल लो हो गई गलती है, स्वीकार करता हूं, लेकिन रोऊंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, आगे सामना करूंगा। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट जी, ये है सेल्फ हेल्प, ये है सेल्फ वर्थ, ये है सेल्फ वैल्यू, ये है सेल्फ एम्पावरमेंट। और प्लीज बुरा मत मानिए, जब मेरे जीवन में कुछ ऐसे ऊपर नीचे घटना होती है, और मान लीजिए किसी ने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया या कर भी रहे होंगे, और पता है मैं क्या कहता हूं? कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता। अरे टकलू खुद तो कर ले, अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो दूसरों को करना चाहिए। मैं समझ, सॉरी यार, दूसरों को करना चाहिए किसी कारणवश, अब करते भी हैं लेकिन हमको समझ ही नहीं आ रहा है। माता पिता हर काम कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को लगता ही नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, वो अलग सिनेरियो है। खुद का खुद के साथ बातचीत कैसा है? It's always criticism, it's always very low energy, it's always very pessimistic. शायद वही कमल भाई आपको कह रहे थे अच्छा लिखिए अपने बारे में, लेकिन हमें तकलीफ पता है क्या होती है? ये पहले रो में हर एक व्यक्ति को देखकर इतनी तकलीफ होती है कि मेरा नहीं है, इनका भर भर के। नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन चमक कितनी ज्यादा है, और उस पे भी प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो और चमक लग रहा है, और मैंने तो थोड़ा नारियल तेल भी लगा दिया ऊपर, और ज्यादा चमक। इसमें ही अपने आप की प्रशंसा करें। हम चाहते हैं कि इसको ना वैलिडेशन कहते हैं साइकोलॉजी में, एंड वैलिडेशन इज नॉट हेल्दी। कोई दूसरा कहे आप बहुत अच्छे हो, कोई दूसरा कहे हम आपको समझते हैं, कोई दूसरा कहे हो गई गलती तो ही मैं ठीक हूं, अदरवाइज तो ठीक नहीं हूं। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आपको वैलिडेट करें, सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है, इसको कहते हैं स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट तो बन जाए। सुबह उठते ही साथ 5 अपने बारे में अच्छा कहें, परिवार वालों के बारे में अच्छे संकल्प करें, मैं आज जीवित हूं, सुरक्षित हूं, शरीर में सिर दर्द नहीं हो रहा, पेट दर्द नहीं कर रहा है, बदन दर्द नहीं कर रहा है, लेथार्जी फील नहीं हो रहा, ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं हो रहा, ये वास्तु स्थिति है। आई एम हेल्दी, गुड गिरीश। सुबह आंख खुली, कई लोग हैं जो सुबह आंख नहीं खोल पाते, अच्छा हूं, आज का दिन बहुत अच्छा। आई एम हैप्पी टूडे, आई हैव अ वंडरफुल फैमिली। नहीं भी होने दो, अपने साथ जैसा बात, अगर आप दूसरों के साथ बात करके उनको अच्छा फील करा सकते हो तो खुद के साथ बात करा के क्यों नहीं फील कर सकते। यस, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्वर्जेशन, सेल्फ कंपैशन। इंग्लिश डिक्शनरी इसी को हिंदी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कमाल है जी, हिंदी अच्छी भाषा है। वो सेल्फ, ये सेल्फ किडनी है क्या? हेलो टकलू सिर, नाक, हाथ, बताइए सेल्फ क्या है? हां, हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृति इतना स्पेसिफिक है। सोल कॉन्फिडेंस वहां शब्द ही नहीं है। इंग्लिश डिक्शनरी खोलिए, सोल कॉन्फिडेंस, सोल लव, ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास, आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, कितना स्पेसिफिक है। किडनी नियंत्रण, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है हिंदी भाषा। थोड़ा मुस्कुरा के बैठे, फोटो खींच रहा है। पहला, अपने आप से बहुत अच्छी बातें करें। और आप यहां से जाने के बाद भी जब हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में 7 डेज कोर्स करेंगे ना, आपको अभी तो इतना टाइम नहीं है हमको आपको बताने के लिए, सचमुच साइंटिफिकली आप जो बोलेंगे ना, आपका ब्रेन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है ये सही है या कल्पना है, दोनों को सेम काम करेगा। उदाहरण देता हूं, कल रात को नींद में गिरीश भाई ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न रियल होता है कि इमेजिनरी? इमेजिनरी। वो थोड़ा अच्छा नहीं था, मैंने देखा कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है, तो बताइए मैं क्या करूंगा? बताइए, भागेंगे। बहुत अच्छा, कहां भागेंगे? हाँ, जहां सुरक्षा वाला स्थान होगा। आप लोग सुरक्षा के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सुरक्षा कहां पर है? चलिए मैं बताता, ये सब स्वप्न में चल रहा है। स्वप्न में मैं भाग रहा हूं, स्वप्न में मैं बचा रहा हूं, लेकिन ओरिजिनली में मैं क्या कर रहा हूं? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं है, कर्राठा मार के बाजू वाले को दुखी भी करते हैं, ठीक है ना? वो काय को मिस कर रहे हो आप लोग, ठीक है? ठीक है, तो हम तो भाई कर्राठा मार रहे हैं, चारों खाने चित्त है बिस्तर पे, और स्वप्न में भाग रहे हैं। 1-2 सेकंड तक ही भाग सकता, और कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली और काट लिया जोर से। मैंने चिल्लाया बचाओ भगवान। हमारे यहां आपको कल पता चलेगा भगवान को बाबा कहते, बाबा माना पिता, संबंध होना चाहिए ना, अपनापन। तो मैंने कहा बाबा बचाओ, और मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा पंखा घूम रहा है। मैंने कहा पंखा कहां से आ गया? कंफर्म करने के लिए कि क्या चल रहा है, मैंने अपनी टांग ऊपर उठा के देखी, मैंने कहा बच गए जी, थैंक गॉड। ये क्या चल रहा था? सपना था। ओरिजिनली में तो मैं सेफ हूं। प्रश्न पूछूं, उस वक्त इस संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, नॉर्मल होगा या हाई होगा? अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप तो लेटे हुए थे, बीपी किसने बढ़ा दिया? आपका ब्रेन, जैसा सोचेंगे ब्रेन उसको एग्जीक्यूट कर देता। उसको ये नहीं समझ में आता है, ये आप कल्पना कर रहे हो कि रियल में, अभी रियल में एक डॉग मुझे काटने आया ना, जो मैं भागूंगा ना बचाने के लिए, जो जो मेरा शरीर करेगा ना, वहां बेड में भी करेगा। आपके ब्रेन को नहीं समझ में आता है। प्रश्न पूछूं, क्या आप बोल सकते हो? मन में फील कर सकते हो, इमोशन पूरी विश्वास के साथ, मेरा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, सुरक्षित है। आपका ब्रेन उस सुरक्षा को हासिल करने के लिए सब चीज करेगा। प्लीज मदद लीजिए इस ब्रेन का, प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जिसको जिसने भी इसको ऐसा बनाया है, प्लीज उसका। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हर चीज में नेगेटिव 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 नेगेटिव। बच्चा एग्जाम लिखने के समय पे पहला ही सोचता है कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं ये वाला प्रश्न ना आ जाए, फिर कहीं ये वाला ना आ जाए। हम कभी ऐसे नहीं सोचते बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, जो आएगा मैं बहुत शांति से प्यार से लिखूंगा, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेट मी एंजॉय द 3 आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ना, आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज सिखाइए घर में जाकर के, खुद पहले सीखिए, फ्री में यही चीज आपको दुनिया में कहीं सीखना होगा ना, आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। यही सिखाते हैं दुनिया में भी, सक्सेस की, सफलता की कुंजी ये वो, बहुत सिंपल है। मैं हेल्दी हूं, माता पिता गांव में सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं, द ब्रेन विल वर्क फॉर इट। मेरे संबंध बहुत मधुर हैं, आपके मुख से वो क्रोध वाला जाएगा ही नहीं क्योंकि ब्रेन। अरे कुत्ता था नहीं जी, आप दौड़ नहीं रहे थे, आपका बीपी किसने चढ़ा दिया? जस्ट बाय इमेजिनेशन। आपका ब्रेन आपको प्रोसेस करके आपके मुख से वैसे ही शब्द आपको ऑटोमेटिकली शांत करा देगा। कुछ करना नहीं है, बस वह चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन, एटलीस्ट अपने लिए, अपनों के लिए तो कर लीजिए, दुनिया का बाद में कर लेना। तो गिरीश का किसी और के साथ संबंधों की मधुरता का पहला आधार स्वयं का, स्वयं के साथ संबंध बहुत श्रेष्ठ, बहुत एलिवेटेड, बहुत स्वीट, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत लवफुल। और सचमुच अपने आप को प्यार करें, शारीरिक तौर पर नहीं। गलती हुई कोई बात नहीं गिरीश, गलती हो गई, सीख लिया, आगे से नहीं करूंगा, सामने वाले को नुकसान हुआ, बड़े नम्रता से माफी कर दीजिए, वो माफ करे नहीं करे इट्स ओके। आप अपने लिए कंफर्टेबल है, आप अपने लिए सूदिंग है, लेकिन होता नहीं ऐसे,
मैंने तो माफी मांग ली फिर भी क्यों नहीं वो माफ कर रहे मुझे, वो हमेशा से।
अरे रो काहे रहा है टकलू, नहीं किया ना उन्होंने माफी, आपने माफी मांग ली, आपने अपना कर लिया ना, अब तो मुस्कुरा। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि माफ करना है नहीं करना है, वो दूसरे दिन भी जाके बोल दीजिए माफी नहीं करेंगे माफ, तो ठीक है ऐसे ही रहो, ऐसे नहीं बोलना। अरे खुद तो इजी हो जाओ, आई अंडरस्टैंड दे शुड बट इन केस दे डिड नॉट। आपको समझ में आ रही है बात? चलिए, पहला खुद का खुद के साथ संबंध, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। और मैंने बहुत स्पेसिफिकली ये शब्द यूज किया, आत्मा का परमात्मा के साथ। और ये भी हमारे एजेंडा में नहीं है, ये भी हमारे 24 घंटे के जीवन में इसका प्रेजेंस ही नहीं है, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। और ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं, कल सुबह का परमात्मा का क्लास बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैंने कहा मेरा मेरे साथ संबंध, तो दो चीजें हैं, एक तो शरीर और दूसरा आत्मा, करेक्ट। शरीर को सिर्फ तीन चीजें चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा, जोर से बोलिए। पहला रोटी, रोटी में पानी भी आ गया, कोविड के बाद मैंने उसको ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया, ठीक है। पहला है रोटी, दूसरा कपड़ा। कौन भाई कह रहे, सिनेमा बहुत देखते थे आप लोग, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है अगर वो अपने तन को ना ढके तो मर जाएगा, ठीक है ना। इतनी गर्मी है, इतनी सर्दी में सड़क में वो गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो कपड़ा नहीं चढ़ाता, लेकिन मनुष्य को चढ़ाना पड़ता है जी, नहीं तो हाइपोथर्मिया विल सेट इन एंड आई विल डाई, करेक्ट। जीव जंतु को भी घर चाहिए, हमको भी चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, हमको भी खाना चाहिए, करेक्ट। पता है समस्या क्या है, हमारा पूरा ध्येय जीवन का ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में अटक गया है। हमारी खुशी, हमारी शांति कहां गायब हो रही है पता है?
इनकी साड़ी मेरे साड़ी से ज्यादा अच्छी।
अरे ये ढकने का एक जीवन, शरीर को नुकसान ना उसके लिए था, अब हम उस साड़ी के चक्कर में परेशान। उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी, गाड़ी एक साधन है, अच्छा होना चाहिए, आप प्रयास करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज आप ये नहीं समझिए कि गाड़ी कपड़ा अच्छा नहीं पहनिए, प्लीज पहनिए। लेकिन जो दूसरी बात है, शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, प्रश्न आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को सात चीजें चाहिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, सात चीजें। इतनी संसार की कोई भी चीज बताइए जो आपको दिख रही है आंखों से, मनुष्य को चाहिए, सब घूम फिरा के इन सातों चीजों में आके अटक जाएगी। आपको उदाहरण देता हूं, एक बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का इचल करंजी करके है, वहां पे बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहां सिर्फ लड़कियां हैं, बच्चियां, गर्ल्स। तो मैंने ऐसे ही क्लास करा रहा था फियर के ऊपर, डर के ऊपर। तो मैंने बच्चों को ऐसे ही पूछा, कन्याएं थी, मैंने गर्ल्स को पूछा व्हाट ड्रेस डू यू लाइक टू वेयर, आपको कौन सा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। तो एक गर्ल स्टूडेंट ने कहा अंकल जीन्स एंड टी शर्ट अच्छा लगता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा कंफर्टेबल है, झंझट नहीं है। उनका कहने का भाव यह था कि महीने में, दो महीने में एक बार भी ना धोएं तो भी चल जाएगा। मतलब कितने स्मार्ट है आजकल के बच्चे, ये व्हाइट व्हाइट तो भाई दूसरा दिन चलता ही नहीं है, हमको धोना पड़ता है। तो जीन्स एंड टी शर्ट कंफर्टेबल है। प्रश्न, हर मनुष्य को घड़ी कंफर्टेबल चाहिए, चश्मा कंफर्टेबल, कुर्सी कंफर्टेबल, वातावरण कंफर्टेबल, प्लीज बुरा मत मानिए, गाड़ी कंफर्टेबल, घर कंफर्टेबल, प्लीज बुरा मत मानिए, पत्नी कंफर्टेबल, सासू मां डबल कंफर्टेबल, ससुर कंफर्टेबल, परिवार वाले कंफर्टेबल, यस और नो, जॉब कंफर्टेबल। हर व्यक्ति हर चीज में कंफर्ट को ढूंढ रहा है। मैंने उस बच्ची को कहा बेटा आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया, नाउ यू आर कंफर्टेबल, सो व्हाट, कंफर्टेबल क्यों? मैं बार बार पूछता गया तो क्या, फिर उसने कहा मैं अच्छी दिखूंगी, जो जो भी था उसने जवाब दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। एक जगह जाके गाड़ी अटक गई, तो उस बच्ची ने कहा अंकल तब मैं खुश रहूंगी। पता है समस्या क्या है? 6 महीने तक परेशान होकर, दुखी होकर हम जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे, क्योंकि तभी खुशी होगी। और भगवान पे भी घंटी बजा दिया, हनुमान जी, भगवान जी एक जीन्स और टी शर्ट दिला दे। हनुमान जी की दोनों आंखें बाहर, और वो कहता है तुमने मुझे कभी देखा जीन्स और टी शर्ट? यार मैंने कभी नहीं पहना, तुम्हें कहां से दिला दूं? क्या मांग रहे हैं? क्योंकि पहले पप्पा से मांगा, फिर मम्मी से मांगा, फिर इधर मांगा, फिर उधर मांगा, खुद भी किया, किसी कारणवश नहीं मिला, तुम बच्चा दिला दे। भगवान का किडनी बाहर आ जाता है, यार हाउ डू आई प्रोड्यूस वन फॉर यू, सॉरी यार, थोड़ा तो हम सेंसिबल होकर के करें ना। जब तक जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त नहीं हुआ तब तक कंफर्ट भी नहीं है, तब तक खुशी भी नहीं है, शांति। पता है प्रॉब्लम क्या? आत्मा सुख को अनुभव करना चाहती है 3 चीजों से, रोटी कपड़ा मकान, ये इक्वेशन सही नहीं है। प्लीज आप जीन्स एंड टी शर्ट खरीदे, प्लीज आप अच्छे से अच्छे गाड़ी खरीदे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शरीर के लिए। आत्मा के लिए भी 5 मिनट निकाले, आत्मा के लिए भी 10 मिनट निकाले, खुद भी निकाले, बच्चों को भी कहें दिस इज फॉर द सोल एम्पावरमेंट। ठीक है, आत्मा को प्यार चाहिए, शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मैं बेटा हूं, 2 मिनट के लिए आप मेरे माता पिता बुजुर्ग बैठे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मुझे प्यास लग रही है, किससे पानी मांगू, अपनों से पानी मांगू या परायों से पानी मांगू? अपनों से मांगू, क्योंकि भारतीय संस्कृति में घर वाले बाहर से अगर कुछ मांगे तो अच्छा नहीं माना जाता है। मुझे याद आता है हम जब छोटे थे, आप लोग में जो बुजुर्ग हैं आप भी अनुभव करते होंगे, उस समय दूर का दर्शन भी नहीं था, पास तो था ही नहीं, ठीक है ना, पास का दर्शन। उस समय एंटरटेनमेंट होता था कि हम किसी के परिवार में जाते थे, वो परिवार वाले हमारे घर आते थे, यस और नो। और मैं तो स्कूल से आते ही साथ मम्मी को पूछता था, मम्मी आज किसके घर जाएंगे? मम्मी कहती थी किसी के घर नहीं जाएंगे, पढ़ाई करेगा तू। और मेरा तो मूड ही खराब हो जाता था। फिर मैं पूछता था हमारे घर कोई आ रहे हैं क्या मेहमान? कोई नहीं आते, क्योंकि फिर मम्मी मम्मी लोग बिजी हो जाते, हम बच्चे बच्चे खेलते रहते थे, फिर रात हो जाती थी, फिर सो जाते थे, पढ़ना नहीं पड़ता था, यस और नो। एक दिन हम गए किसी के घर में, और बच्चे थे, बच्चों को तो क्या बोलते, थोड़ी सी फॉर्मैलिटी नहीं होता है। मैं सीधे किचन में चला गया उनके घर में, वहां उस जमाने में रसना होता था, आप जानते हैं, एक ड्रिंक आता था रसना, तो वो रसना का बॉटल रखा था। मैंने सीधे आंटी को पूछ लिया, आंटी रसना पी लूं? पता नहीं मेरी माताजी पिछले जन्म में सीबीआई में रही होंगी या सीडी, कहां से उसको भनक लग गई, उसने मुझे खींचा, कान दबाया, पल्लू के अंदर, नहीं तो ह्यूमन राइट वायलेशन कोई ना कर ले, पल्लू के अंदर छिपा करके दो धड़ धड़ करके लगाया और कहा रोना भी नहीं, नहीं तो और मिलेगा। आप लोग की मुस्कुराहट में आपके बचपन की पीड़ा भी नजर आ रही है। अब मम्मी ने धड़ धड़ करके लगाया और कहा, आंटी को क्यों मांगता है, ना लायक, तेरे को जो चाहिए वो मुझसे मांगना। तो मैंने रो तो नहीं पाया, लेकिन उसी दर्द और कष्ट में मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा, तू आंटी से क्यों मांगता है, तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना। तो मैंने कहा, देती का हूं। अरे चित्त भी मम्मी का, पट भी मम्मी का, एक तो बोलती है तेरे को जो चाहिए मुझसे मांग, और जब मैं मांगता हूं तो देती भी नहीं है। समझ में नहीं आया पप्पा कैसे झेलते हैं इनको, ठीक है ना। ठीक है, मतलब किसी और से मांगना हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता है, जो चाहिए हमसे मांगो। अब गिरीश, बच्चे को पानी चाहिए, आप हमारे माता पिता हैं, आपके पास मान लीजिए हाइपोथेटिकली 3 बोतल छोटा छोटा बोतल पानी है। मैंने कहा, मम्मी मुझे प्यास लग रही है, और भारत में माता पिता बच्चों के लिए तो जान कुर्बान कर देते हैं, विशेष हमने देखा है, और इसीलिए माता पिता का बहुत ध्यान रखिएगा, सचमुच बहुत सम्मान करिएगा, वो भी हमारी संस्कृति में है, भले वो अच्छे हो नहीं है जो भी हो, बट आप ठीक से करिए। तो मम्मी ने पहला बोतल पानी मुझे दे दिया, मैंने कहा और चाहिए, मम्मी का दूसरा पानी का बोतल पर्स में था वो भी दे दिया, मैंने कहा और चाहिए। मम्मी क्लास छोड़कर के, जीवन छोड़कर, जीवन की डिजायर्स अपेक्षाएं छोड़कर, बच्चे के खातिर यहां से जाके कमरे से तीसरा बोतल पानी लेकर। माता पिता ऐसे ही करते हैं, बच्चों के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, इतने अच्छे माता पिता। मम्मी के पास 3 बोतल पानी था, बच्चे को दे दिया, मम्मी के पास कितना पानी का बोतल बचा, 0, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से सुनिए, आप इस पर विचार करिए और सोचने का प्रयास करिए, गिरीश आत्मा को क्या चाहिए, प्यार, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, ठीक है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, किससे मांगू, अपनों से मांगू या परायों से मांगू, हो गया कल्याण। पति पत्नी के बीच में कोई एक पार्टी बाहर से प्यार मांगना शुरू करे तो महायुद्ध छिड़ जाएगा, और जस्टिफिकेशन में वो व्यक्ति क्या कहता, देती कहां हूं, देना भी नहीं है और बाहर से लेना भी। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, अगर आप थोड़ा भी मेरी इन बातों को बहुत गहराई से चिंतन करें ना, आपके संबंधों की मधुरता ऐसी हो जाएगी। मैं आज ऑफिसर्स के प्रोग्राम में भी कह रहा था, बच्चों के लिए व्हेन केयरिंग, अंग्रेजी में केयरिंग माना, केयरिंग माना हिंदी में पालना देना, व्हेन केयरिंग गेट्स ब्लर्ड, छिप जाता है विथ कंट्रोलिंग, मां को लग रहा है वो प्यार कर रही है लेकिन सामने वाले को लग रहा है कंट्रोल कर रही है। आपको समझ में आ रही है बात, आध्यात्मिकता आपको वो स्पष्टता लाता है कि केयरिंग की लिमिट कहां है, कंट्रोलिंग क्या है, बहुत डिफरेंस है। और मां खुद को जस्टिफाई करती है, प्यार करती हूं ना, लेकिन सामने वाले को तो नहीं फील हो रहा ना, उसको लग रहा है कि मां मेरे ऊपर दबाव डाल रही है, ठीक है। गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, मान लीजिए मम्मी के पास 3 बोतल प्यार है, मैंने कहा मम्मी प्यार चाहिए, मम्मी ने पहला बोतल प्यार दे दिया, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया, प्रश्न, मम्मी के पास कितना प्यार बचा, 0, ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है, थोड़ा सोचिए, प्यार बांटने से, जोर से बोलिए, फिर नील क्यों कहा आपने, होना तो ये चाहिए, मम्मी ने जब पहला बोतल प्यार दिया तो मम्मी का 4 हो जाना चाहिए, दूसरा बोतल दिया तो 8 हो जाना चाहिए, तीसरा दिया तो 16 हो जाना चाहिए, और गिरीश कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, 0, प्रश्न, 0 होगा या 16 होगा, प्यार बांटने से घटता है या प्यार बांटने से बढ़ता है, बहुत अच्छा, प्रमाणित करूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, पहले जोर से कहिए एक साथ, हमने आपको माफ किया, बोलिए, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बिना सोचे समझे माफ कर रहे हैं। अब मैं गलती करने वाला हूं, एडवांस में माफी मांग लिया था, अब बुरा नहीं फील करना, प्रमाणित करूं, बढ़ता है कि घटता है, आपको ये सब कोई किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई गूगल सर्च में भी नहीं मिलेगा, ये सब वो निराकार परमात्मा पिता है ना, पिता बच्चों को जानता है ना, कि वो चाहता है बच्चे कभी ना रोए, कभी ना परेशान हो, सदा सुखी रहे, उसके लिए वो हमको ये टेक्नोलॉजी देता है। प्रमाणित करता हूं, प्लीज आप डिसाइड करें बढ़ता है कि घटता है। दो लोगों के बीच मान लीजिए पति पत्नी, ठीक है, कोई भी एक पति कहो या पत्नी कहो, आइदर ऑफ द टू में एक व्यक्ति दूसरे को प्यार करता है, प्यार दे रहा है या प्यार दे रही है, प्यार देते जा रही है, प्यार देते जा रही है, प्यार देते जा रही है, तुम भी तो करो प्यार। जब एक का चार, दो का आठ, तीन का सोलह और ओवरफ्लो हो रहा है तो फिर मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी तो टंकी फुल है, हां या ना। लेकिन वास्तविकता में यह देखा गया, अगर एक व्यक्ति ही सब कुछ कर रहा है वो और परेशान हो रहा है, पता है उसको ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार है, तुम भी प्यार करो, तुम भी थोड़ा समझो, तुम भी थोड़ा चुप रहो, तुम भी थोड़ा मदद करो, सब मैं ही करूं। घट रहा है वो जो थियोरी है ना, वो सिर्फ थियोरी है, प्रैक्टिकल में नहीं है। फिर हमें लगता है कि हम आई एम बींग यूज इन अ रिलेशनशिप, मैं ही हमेशा झुकूं, मैं ही हमेशा चुप रहूं, मैं ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करूं, आप भी तो करो थोड़ा सा, बोलिए, प्रैक्टिकल बताइए, कहां बढ़ रहा है जी। कहने के लिए तो कह दिया, बांटने से, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ता है, लेकिन एक्चुअली तो